नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर जी। अनवर जी, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद आपको, श्रोताओं को नमस्कार।
तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइन पर। विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। NCAA इंडोर चैंपियनशिप में सिल्वा प्रभु ने ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता। न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में गुलवीर सिंह ने नया पुरुष राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और इंडियन वेल्स ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला जानिक सिनर से होगा। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात मुक्केबाजी की करेंगे। बैंकॉक में आयोजित विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। युवा ओलंपिक भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा करते हुए भारतीय अंडर 19 पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। चंद्रिका पुजारी ने महिला 51 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मार्दोनोवा नाजोकाट को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला 48 किलोग्राम वर्ग में गुंजन इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी से 0-5 से हार गई, जबकि जयश्री देवी महिला 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमरीका की मुक्केबाज से 1-4 से हार गई। पुरुष 50 किलोग्राम वर्ग में एल अम्बेडकर मीतेई को भी यूक्रेनी मुक्केबाज के खिलाफ फाइनल हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इससे पहले टूर्नामेंट में राधामणि लोंगजाम ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो शबाब जी, इस पूरे टूर्नामेंट को देखे तो भारत के प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या भारतीय मुक्केबाजों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है?
यह है तो जरूर, लेकिन थोड़ी सी निराशा इसलिए हुई है कि कल जब 4 मुक्केबाज हमारे फाइनल में पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण पदक की संख्या 1 से ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मुकाबला काफी मुश्किल था। और चूंकि जैसा आपने बताया भी कि अंडर 19 वर्ग है और जो यूथ ओलंपिक्स है उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड होता है, तो उसमें अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन मिलता है। तो सब अभी जूनियर वर्ग के बच्चे हैं और ये सब लोग जानते हैं कि मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जो भारत शुरू से ही भारत का दबदबा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत सारी उम्मीदें इनसे हैं। हम सीनियर लेवल पर इनमें से जो 4 हैं फाइनलिस्ट उनको जरूर बहुत जल्द हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर आपने बिल्कुल सही कहा कि एक भारतीय मुक्केबाजों की एक नई पौध के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ ये एक बेहतरीन प्रदर्शन है। हाँ। और आगे जाकर के निश्चित रूप से वो और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
तो ये कह सकते हैं कि जिन भी खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं वो आने वाले बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें भारत का नेतृत्व और अच्छा करेंगे।
जी, पहले तो सबसे पहले इनका जो यूथ ओलंपिक्स का जो क्वालिफिकेशन था उसमें उनकी परीक्षा होगी और उनमें उसमें अच्छा करते हैं और निरंतर जो लगातार होते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और भी बड़े मुकाबलों के अलावा उनमें भी इन्हें मौका मिलेगा। और ये तो एक ऐसा खेल है कि अभ्यास जितना ज्यादा रहेगा और आप जितने फिट रहेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।
बिल्कुल। वहीं अमेरिका में NCAA इंडोर चैंपियनशिप में सिल्वा प्रभु ने ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता है। प्रभु ने कल 17.05 मीटर की छलांग लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने करियर में पहली बार 17 मीटर की बाधा को पार किया है। तो जिस तरीके से इस पूरे कंपटीशन को देखे तो इसमें क्या लगता है कि ट्रिपल जंप जैसे तकनीकी इवेंट में सिल्वा प्रभु का यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
खुद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया भी कि पहला मौका है जब इन्होंने ये बाधा पार की इतने अच्छे तरीके से, तो ये उनके लिए भी है। और हम लगातार देख रहे हैं कि जो खबरें लगातार आपके पास आ रही हैं इधर, वो जूनियर लेवल पर बहुत अच्छी आ रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि यही कन्वर्ट होकर सीनियर लेवल पर जाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो जूनियर वर्ग है उसमें हमारे एथलीट कैसा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनका प्रदर्शन जूनियर स्तर पर अगर होता है तो आगे जाकर के सीनियर स्तर पर भी प्रदर्शन करते हैं। इसकी ताजा मिसाल जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम है, किस तरह से राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी होता था, इन खिलाड़ियों को वहां पर तराशा, पहले अंडर 19, फिर उसके बाद अंडर 19 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद फिर सीनियर टीम में गए। तो जूनियर लेवल पर जो किसी भी खिलाड़ी, किसी भी एथलीट का जो प्रदर्शन होता है वो काफी मानी रखता है, तो फिर उसके बाद उनको सीनियर लेवल पर जाने में कोई कठिनाई होनी होती है, स्वतः उनका चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर सीनियर टीम में हो जाता है।
बिल्कुल, लेकिन क्या कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सही प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर अगर उन्हें मिले तो वो बड़े मंचों पर?
देखिए, एक्सपोजर कल तो स्वर्ण काल चल रहा है भारतीय एथलीटों के लिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैं भी खेलो इंडिया जैसे प्रतियोगिताओं में जाता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि पिछले कुछ वर्षों में कितना परिवर्तन भारतीय खेलों में आया है। और आज आप देख लीजिए, अचीवमेंट की बात चल रही है, बिना क्रिकेट के पूरा स्पोर्ट्स स्कैन आपने तैयार किया है, कितनी बड़ी बात है। पहले तो हम लोग देखते थे ये अखबार उठाकर, आप देख लीजिए क्रिकेट के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जो बड़ा अचीवमेंट भी सिंगल कॉलम में जाता है अखबार में, आज भी चाहे पैरालंपिक्स हो या फिर इस तरह के नॉन क्रिकेटिंग गेम्स हो, तो स्पोर्ट्स स्कैन ने काफी अच्छे तरीके से इन खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया, सरकार तो दे ही रही है। और फिर साइज हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत खेलो इंडिया, फिट इंडिया, बहुत तरह के ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि संडे की जो साइकिलिंग प्रोग्राम है, उन सबको मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय तो भारतीय जो खिलाड़ियों का स्वर्ण युग है ये कहा जा सकता है, चाहे सीनियर हो या जूनियर वर्ग के।
वहीं इंडियन वेल्स ओपन में डेनियल मेदवेदेव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को 6-3, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना दुनिया के नंबर दो खिलाड़ी यानिक सिनर से होगा। एक रिपोर्ट।
इस जीत के साथ डेनियल मेदवेदेव 2024 इंडियन वेल्स चैंपियनशिप मैच के बाद पहली बार किसी एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। मेदवेदेव ने मैच के दौरान संतुलित और आक्रामक खेल दिखाया। पहले सेट में उन्होंने जल्दी ब्रेक हासिल किया और लगातार दबाव बनाकर 6-3 से सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में अल्काराज ने वापसी की कोशिश की, लेकिन मेदवेदेव ने 4-5 के स्कोर पर दो सेट पॉइंट बचाते हुए दमदार सर्विस की और अगले मुकाबले को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। टाई ब्रेक में मेदवेदेव ने 7-3 से जीत हासिल की और कुल 1 घंटा 37 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। वहीं 2026 में लगातार 16 मैच जीतने के बाद अल्काराज की ये पहली हार थी। इस जीत के साथ मेदवेदेव ने 2026 सीजन में अपनी 18वीं जीत दर्ज की। मेदवेदेव ने इस साल पहले ही ब्रिस्बेन इंटरनेशनल और दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है और अब इंडियन वेल्स का खिताब जीतकर अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पोर्टस्कैन मुकेश कुमार बल।
अनवर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें चाहे मेदवेदेव हो या सिनर हो, दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं, और आपके अनुसार इस फाइनल मुकाबले में किसका दबदबा ज्यादा देखने को मिलेगा?
देखिए, मेदवेदेव ने तो उलट फेर किया है निश्चित रूप से, लगातार 16 जीत वाले खिलाड़ी को इस तरह से हराया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो उनका तो जिस तरह से वो जीत करके फाइनल में आए हैं तो उनकी दावेदारी तो मजबूत है ही है। लेकिन ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे और मैं भी यही समझ रहा था कि शायद अल्काराज फाइनल में होंगे, लेकिन अब फाइनल का मुकाबला एक बिल्कुल नया हो जाएगा, नए तरीके का, तो उसमें यह कहना अभी बहुत मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी। अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मेदवेदेव का थोड़ा सा पल्ला भारी है, और जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े खिलाड़ी के विरुद्ध अपसेट किया है तो उसको लेकर के तो उनका उत्साह तो बढ़ा हुआ होगा ही, एक बड़ी जीत हासिल करके फाइनल में पहुंचे हैं।
बिल्कुल, उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। और दूसरी तरफ यानिक सिनर की बात करें तो वो भी इतिहास रचने की कोशिश तो करेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे।
अच्छा, इस पूरे मुकाबले में ये भी देख रहे थे कि अल्काराज, जिन्होंने 2023 और 2024 दोनों में इंडियन वेल्स फाइनल में मेदवेदेव को हराया था, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी की कोशिश भी की लेकिन थोड़ा पीछे रह गए।
देखिए, होता है कि अगर आप शुरू में ब्रेक पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर अपना सेट पॉइंट बचा लेते हैं, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है उस मुकाबले में, तो वो फिर प्रतिद्वंदी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और वही काम मेदवेदेव ने किया, एक जरा समय भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुकाबले में ऐसा लगे कि बने रहने की कोशिश की, और बहुत देर तक वो कोशिश आगे बढ़ती रही, ये करने ही नहीं दिया अपने प्रतिद्वंदी को। तो अगर आप मौका नहीं देते हैं जरा सा भी तो फिर काम मुश्किल हो जाता है, और ये एक बड़ी जीत है, ये एक उलट फेर वाली जीत है, मैं तो ये कहूंगा।
बिल्कुल, क्या लगता है ये मुकाबला पुरुष टेनिस में नई प्रतिद्वंदिता की शुरुआत माना जा सकता है?
बिल्कुल सही है। देखिए, आप जिस तरह से ग्रैंड स्लैम में भी नए नए प्रतियोगी आ रहे हैं, अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चैंपियन बन रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि एक एक खिलाड़ी का पांच पांच साल तक ग्रैंड स्लैम पर राज रहता था, एक एक दशक तक रहता था। तो युवा खिलाड़ी जो नए खिलाड़ी होते थे वो चुनौती नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। इस खेल में अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं। देखिए, पहला ग्रैंड स्लैम साल का जीतने वाला खिलाड़ी को कितना संघर्ष करके बाहर हो जाना पड़ा एक टूर्नामेंट में, तो ये तो टेनिस के लिए बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल। इसके साथ ही श्रोताओं, हाफ मैराथन की बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में गुलवीर सिंह ने आज नया पुरुष राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 21.1 किलोमीटर की दूरी तय कर अविनाश साबले का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मैराथन में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। 27 वर्षीय गुलवीर 59:42 का समय लेकर उन्होंने दौड़ पूरी की थी और वह दक्षिण अफ्रीका के एड्रियन से पीछे रहे जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मोरक्को के जुहैर तालवी ने दूसरा स्थान हासिल किया है।
अविनाश की आपने बात कही, इसी दिल्ली मैराथन हाफ 2020 में उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया था जो आज तोड़ा गया है
जी।
तो गुलवीर के पास 5000, 3000, 10000 सबका रिकॉर्ड है, तो एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। क्या कमाल का भारतीय सेना का ये एथलीट है, उसने फिर से एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
बिल्कुल। और इसके साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 65वां संस्करण आज देशभर के 5000 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर 300 से अधिक फिट इंडिया चैंपियंस, एम्बेसडर और कई विशिष्ट अतिथियों ने अलग अलग शहरों में साइकिलिंग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। संस्करण का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में हुआ जहां 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन राहगीरी फाउंडेशन के सहयोग से किया गया जिसके साथ ही राहगीरी डे की भी वापसी हुई। इस विशेष आयोजन में 3 साल के बच्चों से लेकर 70 वर्ष तक के लोगों ने भाग लिया। साइकिलिंग से पहले प्रतिभागियों ने रस्सी कूद, जुम्बा, योगासन और कई मनोरंजन खेलों में हिस्सा लेकर फिटनेस का संदेश दिया। इस सप्ताह का कार्यक्रम उपभोक्ता अधिकारों को समर्पित रहा और इसमें दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री सूद ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे साइकिल का उपयोग करें जिससे प्रदूषण कम करने और पर्यावरण सुधार में मदद मिलेगी।
फिटनेस के माध्यम से हम बाकी युवाओं का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना, पर्यावरण के खिलाफ लड़ाई, इन सब विषयों को लेकर ये प्रयास है और दिल्ली सरकार मिलकर केंद्रीय खेल मंत्रालय और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ इसको मास मूवमेंट बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखे।
भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक अभियान नहीं बल्कि देश को स्वस्थ और सक्रिय बनाने का आंदोलन है जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। फिट इंडिया और राहगीरी डे के इस संयुक्त आयोजन ने संदेश दिया कि साइकिलिंग और पैदल चलना न केवल व्यक्तिगत फिटनेस के लिए जरूरी है बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। और वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है जहां पर सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली शानदार जीत के लिए बीसीसीआई की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को 2024-25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष का पॉली उमरीगर पुरस्कार, स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला का पुरस्कार, पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अनवर जी, क्या लगता है कि ऐसे पुरस्कार समारोह जो होते हैं वो युवा खिलाड़ियों को कितना प्रेरित करते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि इसमें कई टीमें हैं, कई खिलाड़ी इंडिविजुअल भी हैं और फिर जो अभी रणजी सत्र समाप्त हुआ है उसके भी खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया है कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा हैं सम्मानित होने वाले, चूंकि पुराने खिलाड़ियों को भी देना है, नए खिलाड़ियों को भी देना है डोमेस्टिक में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये नमन है बीसीसीआई की तरफ से इन खिलाड़ियों के लिए।
बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का और कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
धन्यवाद।